نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي روح القران اور آج اس میں سے ہم کریں گے پارا نمبر 14 14th پارا جس کا نام ہے روبما اور یہ سورت ہجر کی آیت نمبر 2 سے لے کر 99 تک اور پھر آگے اگلی صورتیں بھی ہیں اور پہلا لفظ ہی پارے کا صورت کے اندر ہے آئیے دیکھتے ہیں بہت ہی حسرتوں میں ڈوبی ہوئی بات سے پارا شروع ہوتا ہے ٹاپک ہے آیت نمبر 2 سے 3 کا کاش ہم بھی مسلمان ہوتے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ان قریب وہ وقت آئے گا کہ جب کفار یہ کہیں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے یہ کب آئے گا یا یہ گزر چکا اس کے بارے میں تفاسیر تو بہت سی ہیں کافر کو تو یہ حسرت تھی ہے اور رہے گی ہم سب کو ایک لمحے کے لیے اللہ کا شکر کرنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں باشعوری طور پہ کہیے الحمدللہ اللہ ہمیں مرتے دم تک اسلام پہ رکھے ولا تموتن الا وانتم مسلمون دوسری بات ہے کہ دنیا میں اسلام کے غلبے کو دیکھ کر ایسا ہو یا جہنم میں سے گناہ گار جہنمیوں کو نکلتا دیکھ کر یہ حسرت ہو لیکن یہ حسرت ہے بہت بڑی احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جو گناہ گار مسلمان ہوں گے بالآخر اپنی سزا بھگت کر جب وہ جہنم سے نکالے جائیں گے تو اس بات کو دیکھ کر وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں اسلام کو قبول نہیں کیا تھا وہ حسرت کریں گے کہ اگر ہمارے پاس بھی اسلام ہوتا تو ہم آج یا سونر اور لیٹر والی بات کہ کبھی نہ کبھی بالآخر ہم بھی جہنم سے نکل آتے اللہ تعالیٰ نے یہاں وجہ بتائی کہ دنیا میں حق بات سننے حق بات جاننے اس کا پیغام پاس پہنچ جانے کے باوجود بھی اکثر لوگ کیوں اللہ کے بندے نہیں بنتے اور یہاں یاد رکھیے کہ لفظ مسلم وہ مسلم نہیں ہے جس کو آپ اور میں کلچر کے نام پہ یا مذہب کے نام پہ جانتے ہیں مسلم کون ہے جو اللہ کے آگے سبمٹ ہو جائے جو حقیقت میں اللہ کا بنے ایک مسلمان کہلانے والا بھی غیر مسلم ہو سکتا ہے اصل بات یہ ہے کہ ہم اللہ کی کتنی مانتے ہیں دوسرے لفظوں میں کہیے جائے کہ رب کو بھی ماننے والا اور رب کی بھی ماننے والا مسلم ہے اب اگلی آیت میں دو چیزیں ہیں ذرہم یاکلوا ویتمتعوا چھوڑ دیجئے ان کو لیٹ دیم گو کیا یاکلوا کھائیں پئیں اور یتمتعوا فائدے اٹھائیں اور ان کو ان کی لمبی آرزویں غافل کر دے فسوف یعلمون ان قریب یہ جان لیں گے یا ذرا سی بات کھانے پینے کے بعد مراد یہ کہ لیئر موڈ ہے غیر مسلم کا لیئر موڈ ہوتا ہے وہ پارٹی موڈ میں ہوتا ہے وہ فن پلیکس موڈ میں ہوتا ہے اس کی زندگی کا مقصد ایٹ ڈرنک بی میری ہوتا ہے وہ کوئی سنجیدہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور بالآخر یلہم العمل لمبی آرزویں شروع ہوتی ہیں تو اس آیت میں لمبی آرزوؤں کی ممانعت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے صحیح بخاری میں 6416 نمبر ہے کہ آپ نے میرا شانہ پکڑ کر فرمایا یعنی دیکھیے گا کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سکھانے کا طریقہ ہے آپ بھی جب اپنے ارلی ٹین ایجر بچوں سے بات کریں نا تو دور سے نہ چلایا کریں جتنا آپ شاؤٹ کریں گے نا اتنی آواز ان کے کانوں کے اوپر سے جائے گی قریب بلایا اور پھر ایسے شانے کو پکڑ لیا تو یہ ایک ہیومن ٹچ جو ہوتا ہے نا یہ بہت بڑا ایک ریسپٹر بن جاتا ہے ایک قبولیت کا ذریعہ بنتا ہے تو بعد میں انہوں نے کیا کہا کن فی دنیا کا انک غریب و عابر السبیل دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ مسافر یا راستہ چلنے والا ہو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا کرتے تھے کہ شام ہو جائے تو صبح کے منتظر نہ رہو اور صبح کے وقت شام کے منتظر نہ رہو اپنی صحت کو مرض سے پہلے غنیمت جانو اور زندگی کو موت سے پہلے دیکھا جائے تو ہم سب کے لیے بھی اس میں بہت بڑی بات ہے اور جب فکر آخرت لگ جاتی ہے نا تو عرضیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں آنکھ رونے لگ جاتی ہے دل خوف کرنے لگتا ہے ہم سب کو چھوڑ کر اپنی فکر کریں کیا ہماری زندگی کا مقصد صرف کھانا پینا موج مستی تو نہیں بن گیا بابر بیش کوش کہ جہاں دوبارہ نیست کہ آج ہم مسلمانوں کا بھی زندگی کا مقصد صرف فن اینڈ فرولک تو نہیں رہ گیا कभी पार्टी मोड है तो कभी कोई दूसरा मोड है। तो ज़िंदगी एक हकीकत है, संजीदा हकीकत है। कमरे इम्तिहान में बैठा हुआ शख्स अपने आप को ज़िम्मेदार महसूस करता है, और एक पार्टी के लिए जाने वाला पहले ही खाने पीने के मूड में आता है। हम सब खुद से पूछें कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसा बनाया हुआ है, फिर पता कैसे चलेगा? लम्हों की हिफाजत। आप अपनी ज़िंदगी के एक एक लम्हे, एक एक सेकंड की हिफाजत करेंगे, क्योंकि ये आपकी आखिरत की करेंसी है। आपका मेरा एक एक सेकंड, एक एक मिनट मेरे आपके रिजल्ट्स पे असरअंदाज हो सकता है। वो स्टूडेंट जो 3 घंटे की क्लासरूम की एक्टिविटी में अपना शुरू का वक्त ज़ाया कर दे, आप ज़रा सोचिए एंड पे उसके ऊपर कितना प्रेशर होगा। तो जिन लोगों ने बचपन खेल कर खोया, जवानियाँ नींद भर सोए, बुढ़ापा देख कर कहीं रोना ना पड़े। फिर इसके बाद आगे आयत नंबर 4 से 8 में नाफरमानों के लिए अजाब का एक वक्त है, और नहीं हमने भेजा किसी बस्ती में मगर उसके लिए एक किताबों मालूम है, यानी एक वक्त मालूम है, एक लिखी हुई बात है। मुराद ये कि ये बात डिसाइड हो चुकी और कोई उम्मत अपने वक्त से ना आगे निकलती है ना पीछे। और इसके बाद अब इस सूरत में आपको नबी सल्लम पर जो मक्का वालों के एतराज़ात थे, और आपको कैजुअल लेना और नौसबिल्ला आपका मजाक उड़ाना है, उसकी एक बड़ी ही गंभीर सी मिसाल आयत 6 में देख लीजिए। वकालू, और वो कहने लगे। अब तसव्वुर में लाइए, मक्का की गलियां, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं जो हर लिहाज से बेहतरीन उस्वा थे, और एक शख्स आके कहता है या अय्युहल्लज़ी नुज़िला अलैहि ज़िक्र। इधर आओ वो शख्स जो कहते हो कि मुझ पर नसीहत या जिक्र या कोई रिमाइंडर उतरा है, यानी तमस्खर का अंदाज़। इन्नक लमजनून, तुम तो दीवाने हो, कैसा लगेगा? आप सोचिए कि हमने दीन के लिए भी बातें नहीं सुनी। हम सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से डरते हैं और दीन पे अमल नहीं करते, वो लोगों की बातें हैं। लोग क्या कहेंगे, मैं कैसी लगूंगी, नज़रों में ऐसी आऊंगी, वैसे आऊंगी, ये होगा। तो नबी को सामने खड़ा करके वो कहते थे तू मजनू है, और मजनू और दीवाना तो कहते थे, क्यों नहीं ले आता हमारे पास कोई फरिश्ता अगर तू सच्चा है? अल्लाह कहते हैं इनको बता दो हम फरिश्ते नहीं नाजिल करते, हाँ मगर किसी मकसद से, कोई हक होता है, कोई बात होती है। और जब वो आ जाते हैं वमा कानू इज़न मुनज़रीन, फिर वो मोहलत नहीं दिए जाते। तो इससे क्या पता चलता है कि दीन के लिए बातें सुनना ये सुन्नत नबी है। आगे है जी कुरान की बात। यहाँ आपको कुछ गवाह मिलेंगे नबी सल्लम की रिसालत के, जिसमें सबसे पहली गवाही कुरान के मौजज़ा होने पे, यानी कुरान क्या है। और ये वो आयत है जिसका मैं आपको पहले से बता दूँ, तौरात और इंजील और कुरान के अंदर बुनियादी फ़र्क ये है जो इस आयत में है। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने इस जिक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। यहाँ देखिए कुरान का नाम अज़-ज़िक्र आया है, ये नहीं आया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लनल कुरान। कुरान पाक के बहुत सारे नाम जो कुरान में ही आए, उनमें से एक नाम जिक्र, और जिक्र कहते हैं रिमाइंडर को, मौजज़े को, जो चीज़ आपको याद रहे। जब से कुरान नाजिल हुआ है आज तक इसके एक शोशे में भी तब्दीली नहीं आई। हा और हा का फ़र्क, कौफ और काफ का फ़र्क, सीन और स्वा का फ़र्क तो बड़ी दूर की बात है, ज़बर ज़ेर में और ज़ेर ज़बर में नहीं बदली। यह है इस किताब के मौजज़ा होने की दलील। पिछली किताबों में और कुरान पाक में यही बुनियादी फ़र्क था। अल्लाह ताला ने कुरान की हिफाजत का ज़िम्मा लिया है, तो आप कह सकते हैं कि कुरान का मुहाफिज अल्लाह ताला है। हर किस्म की तब्दीली और तगैयुर से इसकी हिफाजत की जाती है, और इसमें किसी भी किस्म का इजाफा या किसी किस्म की कोई कमी जो है वो नहीं की जाती, यानी इसको सिक्योर किया गया, और कोई इसको तब्दील करने की कुदरत भी नहीं रखता। अब इसको सामने रख कर सोचिए, उर्दू बदल गई, आपके बचपन में जो उर्दू बोली जाती थी आज वो बोली जाती है। अल्लामा इकबाल की शायरी कितनों को समझ आती है, मीर के अशार किसको समझ आते हैं, इंग्लिश को लीजिए, शेक्सपियर की इंग्लिश समझ आती है। यानी 100 साल के अंदर एक ज़ुबान ख़त्म होके बल्कि एक नए रंग में आ जाती है। अरबी कुरान पढ़ते वक्त आज तक ये 13 पारों में आपको महसूस हुआ, आज भी कुरान एवर न्यू है, जैसे आसमान नया, जैसे चांद रोज़ की तरह खूबसूरत, कुरान भी हमेशा के लिए। ये एक पीडीएफ कॉपी है, सिर्फ समझाने की खातिर। अब तो पीडीएफ के भी कई को निकल आए कि जिसको एडिट कर लें, लेकिन अमूमी तौर पे डॉक्यूमेंटेशन पीडीएफ में दी जाती थी, क्योंकि ये चेंजेबल नहीं होती। पावर पॉइंट चेंज हो जाएगा, वॉट चेंज हो जाएगा, इन पेज तो बहुत ही चेंज हो जाएगा। कुरान में कोई तब्दीली नहीं कर सका। आज आप देखिए कि मुसलमान अमल तो नहीं कर रहे इतना, इल्ला माशाल्लाह, लेकिन कुरान अपनी असल में आज भी मौजूद है। तौरात और इंजील के साथ अल्लाह का ये वादा नहीं था, इसलिए वो मज़हब अब बिल्कुल ख़त्म होने के करीब है। आज अक्सर अहले किताब जो हैं वो एथियस बन चुके हैं। ख़ुद को क्रिश्चियन कहलवाने वाले चर्च में नहीं जाते, तो क्या पता चला कि आप और मैं इतनी ऑथेंटिक किताब इस वक्त पढ़ रहे हैं। दिल से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बताए 10 से 15 में एक बहुत ही हसास मौजू है। हर दौर में अक्सरियत ईमान से महरूम रहती है, ये बड़ी अजीब बात है। और अलबत्ता तहकीक, हमने आपसे पहले भी बहुत सारे गिरोह भेजे, लेकिन होता क्या था, जब भी कोई रसूल उधर आता था मजाक ही उड़ाया जाता था उसका। हम इसी तरह इस कुरान को मुजरिमों के दिलों में सुलाखें बनाकर दाखिल करते हैं, वो इस पे ईमान नहीं लाते, और ये पहलों की भी आदत है। और ये आपसे जो मुतालबे करते हैं, इसको छोड़ दीजिए, अगर हम इन पर आसमान के दरवाजे भी खोल दें और ये उस पर चढ़ने भी लग जाएं, यानी अनयूजल चीज़ें होने भी लगें, लखालो इन्नमा सुकिरत अबसारुना, ये कहेंगे हमारी तो आंखें मस्खूर कर दी गई, हम पे तो जादू कर दिया गया, बल नाहनु कौमुन मस्खूरून। नबी सल्लम की ज़िंदगी का वो दौर था, सूरत हिजर के नज़ुल का, जब मोजज़े मांगे जा रहे थे, और आगे भी हम पढ़ेंगे सूरत नाहल में भी ऐसी और सूरत बनी इसराइल में भी इसकी बातें आएंगी। तो अल्लाह ताला कहते हैं आप इनको छोड़ दीजिए। देखिए मैं आपको छोटी सी बात करूं कि अगर आपको मेरी ये बात नहीं सुननी, तो आपको जितना मर्जी कोई फैसिलिटेट कर दे आप नहीं सुनेंगे। कोई कहेगा ये सुन लें, ये लिंक बहुत अच्छा है, अच्छा, वहाँ आ जाइए, वहाँ हम सब मिलकर बैठकर सुनते हैं, अच्छा, वहाँ कुर्सी है, वो आ भी जाएंगे, कहेंगे नहीं कुर्सियाँ बड़ी सख्त हैं, अच्छा भाई ये नरम रख दी, वो कहेंगे ये नरम बहुत है, इस पर नींद आ जाती है, नहीं मेरी तो कमर में दर्द है, आप कहते हैं आप आ जाए हम सोफे भी रख देंगे, आप बेड भी लगा दें, जिनको नहीं आना उनको नहीं आना। कभी कहेंगे सुबह है, कभी कहेंगे शाम है, कभी कहेंगे देर है, कभी कहेंगे सवेर है, कभी वीकेंड है, कभी वीक ऑफ। और वही कहते हैं ना कि कहा कि समंदर में जाओ तो कहते हैं कि तूफान का डर है, कहा ऊँट पे बैठ जाओ कहते हैं कोहान का डर है। तो ना मानने के 100 बहाने, अल्लाह ताला हमें इस हिदायत के सफ़र पे चलाता रखे। आगे आयत 16 से 22 में अल्लाह ताला की कुदरत के कुछ शाहकार हैं। और बेशक हमने बना दिया आसमान में कई बुर्ज और उसकी खूबसूरती का ज़रिया, ज़य्यन्नाहा लिन्नाज़रीन, कितना प्यारा अंदाज़ अल्लाह ने इख्तियार किया, और हमने फिर हर तरह के शयातीन से इसको बचा दिया। बुनियादी तौर पर इसमें एक तो अल्लाह ताला की कुदरत की बातें हैं ना, दूसरा सितारों के मकसद भी हैं। हर दौर में लोगों ने सितारा परस्ती के नाम पे, या आपका हफ्ता कैसा जाएगा, या सितारे गर्दिश में हैं, आपका स्टार क्या है, आपका बुर्ज क्या है, आप हमल हैं, आप जोजा हैं, आप वो है, ऐसी बहुत सारी बातें की। तो इस हिस्से में से हम अपने लिए जो अमल की बात पिक करेंगे कि सितारे आसमाने दुनिया की खूबसूरती का ज़रिया तो हैं, किस्मत का हाल बताने का ज़रिया नहीं है। आप देखिए कि ज़मीन पे भी कुछ स्टार्स होते हैं, वो अमूमन हिदायत के रास्ते से भटका देते हैं, आसमान के स्टार्स रास्ता बताते हैं। आज भी आप देखिए जहाज़ सितारों से रास्ते देखते हैं, बहरी जहाज़ तक सितारों के साथ चल रहे होते हैं। आपका मेरा काम क्या है कि किसी किस्म की ऐसी कोई चीज़ जिसमें किस्मत का हाल सितारों के ज़रिए मालूम करना हो, उसको ख़त्म कर दीजिए। ये बहुत गहरी बात है, इसका अकीदे से ताल्लुक़ है, इबादत कबूल नहीं होती, और ऐसे बंदे का इस्लाम ख़तरे में पड़ जाता है। और कभी माजी में किया था, और बचपन में तो सभी जवानियों में और कापियों में और स्कूलों कॉलेजों में तो करते थे, हत्ता कि ख्वाहिश भी यही थी कि शादी भी उसी शख्स से हो जिससे हमारा सितारा मिलता हो, और सितारे गर्दिश में हैं और उनसे मेरे सितारे नहीं मिलते, ये हमारे कल्चर में आम लफ्ज़ हैं, इन सब को ख़त्म कीजिए। और अगर किसी अखबार में, किसी भी मैगज़ीन में अभी तक कोई ऐसा कॉलम चलता है जिसमें सितारे या हफ्ता कैसा गुजरेगा, तो आप उनसे बात करके इंशाअल्लाह ताला उनको कायल कीजिए कि ये गैर इस्लामिक चीज़ है और हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आगे आयत नंबर 23 से 25 में अल्लाह जानता है आगे बढ़ने वालों को और पीछे रहने वालों को, वइन्ना लनाहनु नुहयी व नुमीतु व नाहनुल वारिसून। आप देखिए दुनिया में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ वक्तों पे आते हैं, पहले दादा आए, फिर बाप आया, फिर पोता आया, फिर पर पोता आएगा, एक नस्ल आ रही है तो एक नस्ल जा रही है। अल्लाह ताला कह रहे तुम्हें कितने को याद है। आप देखिए, आपको अपने बाप का नाम याद है अल्हम्दुलिल्लाह, दादा का भी सबको याद होगा। आप सुनने वाले सोचिए कि आप में कितने लोगों को अपने परदादा का नाम याद है और उसके बाबा पता ही नहीं। चलिए नीचे बच्चे, अल्हम्दुलिल्लाह उनके भी बच्चे पोते नवासे, उनके बच्चों का आपको पता। अल्लाह कहते हैं मुझे पिछलों का भी पता है, मुझे तुम्हारे अगलों का भी पता है, यानी उसका कितना इल्म है। और वह इन्ना रब्बा का हुआ यख्शुरुहुम इन्नहु हकीमुन अलीम, और सारे अगले पिछलों को इकट्ठा करके मैदान हशर में ले आएगा। इससे आप अल्लाह ताला के नाम अल वारिस इसको भी देख लें। हम सारी ज़िंदगी विरसे की बातें करते करते गुजार देते हैं, ये बच्चों के लिए जमा कर लूँ, मेरे बाद काम आएगा, ये होगा। फिर जब हम फौत हो जाते हैं तो फिर हमारे बच्चे अपने भाई बहनों के साथ टसल पे आ जाते हैं, फिर कभी चचा भतीजे में, कभी भाई बहनों में चपकलश होती है, और इसी तरह दुनिया से जाते हैं। कई लोग खुद मर जाते हैं और अभी तक उनको विरसे का माल नहीं मिला होता। अल्लाह अलवारिस, से आप चाहें तो अमेज़ पर अस्माउल हुस्ना में इस नाम को सुनिए, बिल्कुल सिनेरियो ही बदल जाता है। हम सोचते रहते हैं मेरे बाद काम आएगा, भाई आपके सामने काम क्यों ना आए, ये चीज़ मेरे बाद दीन के नाम पे है। तो क्या आप खुद नहीं देखना चाहते अपनी ज़िंदगी में दीन का काम? तो ये जो विरासत और विरसा है ना, बच्चों की जिम्मेदारियाँ पूरी कीजिए, उनकी शादियाँ भी कर दी, उनको पढ़ा लिखा भी दिया, उनके अलग काम भी बना दिए। अब जो अल्लाह ने आपको दिया हुआ है, आप इससे पहले कि वो आपकी विरासत बने उसको विरसा बना दें। वट एम आई लीविंग बिहाइंड, यानी आप कह सकते हैं कि क्या मैं अपने पीछे विरासत छोड़ रही हूँ या विरसा। फ़र्क क्या है? विरसा नस्लों तक रहता है। हमारे यहाँ तो लोग विरसा के नाम पे गाने बजाने को आपने देखा होगा या सुना होगा ना, लेकिन लेगेसी, सहाबाए कराम ने लेगेसी छोड़ी थी, हम आज इनहेरिटेंस छोड़ रहे हैं। ये हमारे और सहाबा के बीच में बुनियादी फ़र्क है, जो आप दूसरे दौरे कुरान में सुन रहे हैं। हर रोज़ हर दिन हम शर्मसार ही होते हैं, हमें दुनिया में अपनी जायदादें क्यों बनानी है, हम क्यों एक्स्ट्रा टाइम लगा रहे हैं। आज हमारे मर्दों के पास तरावी भी पढ़ने का टाइम नहीं, उनके पास दौरे कुरान सुनने का वक्त क्यों नहीं है? क्योंकि सुबह काम पे जाना है और सुबह जल्दी जाना है, रात को देर से आना है। तो जितनी अल्लाह ने दी है नेमत, उसके बाद बाकी वक्त अपनी तरबियत पे, अपने आखिरत के ऊपर भी लगाया जाए। फिर इसके बाद आगे आयत नंबर 26 से 30 में इंसानी तख्लीक के मराहिल हैं। अल्लाह ने ग्रेजुअली जो चीज़ें पेश की उसमें एक इंसान खुद है। वलक़द खलक़नल इंसान मिन सलसाल मिन हमअ मसनून, अब ज़रा सा इंसान का तारुफ तो देखिए। और बेशक हमने इंसान को गली सड़ी कीचड़ की मिट्टी से पैदा किया, और जिन्नों को हमने इससे पहले आग के शोले से पैदा किया। और जब आपके रब ने कहा फरिश्तों से कि बेशक मैं तो एक बशर को बनाने वाला हूँ, वही सलसाल मिन खमई मसनून, फिर जब मैं उसको बना दूँ तो उसके अंदर अपनी रूह को फूंक दूंगा, तो तुम उसके आगे सजदा रेस हो जाना। बस सजदा कर लिया फरिश्तों सब ने, मगर इब्लीस ने ना किया। अब आगे बात आएगी। पहली बात तो देखिए कि अल्लाह ताला की तख्लीक की बात है, कैसे अल्लाह सुबहान तआला इंसान की तख्लीक करता है। खलक नल इंसान मिन सलसालिन मिन खमाय मसनून, इंसान को काली और सड़ी हुई खनखनाती हुई मट्टी से पैदा किया। इससे पहले वल जान खलक ना हो मिन कबलू मिन नारिस समूम, जिनको आग के शोले से पैदा किया। ये है अल्लाह की तख्लीक। आप देखिए कि पानी के कतरे से एक इंसान कैसे बनता है। आज भी एम्ब्रियोलॉजी को पढ़ने पढ़ाने वाले, आज भी मदर वूम में बच्चे की मुख्तलिफ हालतों पे बात करने वाले इसका पूरी तरह जवाब नहीं दे सके। इतनी तरक्की के बावजूद पानी का कतरा हड्डी में कैसे बदलता है, पानी का कतरा बाल में कैसे बदलता है, पानी का कतरा है आसाब यानी मसल्स में कैसे बदलता है, गोश्त में कैसे बदलता है, ये रिब कैसे बनती है, ये आपकी बैक बोन कैसे बनती है, कभी आपने सोचा? ये अल्लाह की शान है। तो जो रब आपको मुझे बना सकता है, क्या वो आपके मेरे इंजर पिंजर से वाकिफ नहीं? आगे हम सूरह कौफ में पढ़ेंगे कि हम तो तुम्हारे दिल में उठने वाले वसवसे को भी जानते हैं। वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तो क्या पता चला कि अल्लाह से इंसान ख़ुद को छुपा नहीं सकता। और दूसरी बात है कि जब बनाने में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है तो मकसद भी तो बहुत बड़ा होगा। इसीलिए अब आगे आयत 31 से 35 में इब्लीस की इंसान दुश्मनी की बात है।